Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
कि बाबा ने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमें बताए हैं, जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन और हमारे योग का अभ्यास जुटा हुआ है। एक बहुत ही रिमार्केबल बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने हमें कही है, वो है कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसा चित्र वैसा चरित्र। देखने से हमारी, जैसे दृष्टि से हमारी वृत्ति और हमारी स्मृति का बहुत गहरा संबंध है। और अगर हम अपना मनोपरिवर्तन चाहते हैं, लाइफ में चेंज चाहते हैं, तो चित्र का बहुत महत्व है। ना केवल प्रदर्शनियों का, लोग ऑडियो विजुअल की आजकल बात करते हैं, ना केवल प्रदर्शनी का हम प्रयोग करते हैं लोगों को चित्रों के माध्यम से समझाने के लिए, बल्कि हमारा जो मनोपरिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी है, वो चित्र से बहुत कनेक्टेड है। आप देखेंगे, जब मनुष्य क्रोध करता है, जब वासना में होता है, जब लोभ आता है, जब मोह आता है, तब भी उसके सामने चित्र आता है, और जब वो इनसे उपराम होकर छूटा हुआ होता है, तब भी उसके सामने चित्र आता है। दरअसल किसी ने कहा है कि मनुष्य के जो विचार हैं, वो चित्रमय भाषा में हुआ करते हैं। शब्द की उत्पत्ति बाद में होती है, लेकिन पहले पहले मनुष्य के सामने चित्र आता है। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति कोई जब खाना खाता है कुर्सी पर बैठकर, तो उसको जरूरत महसूस होती है कि उसके सामने कोई ऊंची जगह हो जहां पर वो भोजन की थाली रखकर खा सके। तो अपने मन में उसके एक चित्र आता है कि ऐसा एक तख्ता सा हो, उसकी चार टांगे सी हो और उसको एक बड़ाई से बनवा लिया जाए तो कैसा रहेगा, उसकी इतनी हाइट हो ताकि उसको रखने में आसानी हो। टेबल नाम उसका बाद में पड़ता है, मेज नाम उसका बाद में पड़ता है। जैसे कहा गया है कि आविष्कार जो है वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले आवश्यकता महसूस हुई, फिर वो आविष्कार किया गया, फिर जब वो चीज बन गई तो जरूरी है कि उसको कोई नाम दिया जाए, क्योंकि अब वो आ गई है प्रयोग में, तो उसको कोई किसी नाम से बुलाना पड़ेगा, तब उसके बाद होता है। तो ये मैं कह रहा था कि कहा गया है कि चित्र सबसे पहले मनुष्य के मन में आते हैं। बच्चा भी भाषा बाद में सीखता है, बोलना या लैंग्वेज उसको बाद में सिखाई जाती है, लेकिन व्यक्तियों के वस्तुओं के चित्र देखना पहले से शुरू कर देता है। तो चित्र जो है वो हमारे माइंड पर अंकित हो जाते हैं, एक इम्प्रेशन डाल के जाते हैं। क्या हम इस जो सिद्धांत है, इसका पूरा प्रयोग अपने जीवन के मनोपरिवर्तन में कर रहे हैं, या इसकी कोई और आवश्यकता है? मैं ये समझता हूँ कि इसको और ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, अब हम वीडियोज यूज करते हैं, जो अगर हम किसी को जबानी बैठ के समाचार सुनाएं कि हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसकी बजाय मुंह बोलती तस्वीर जिसको कहा जाता है, वो अगर सामने आ जाती है तो उसका इम्प्रेशन और होता है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आज आप देखते हैं, लोग ज्यादातर टीवी बैठ के देखते रहते हैं, उनको आप कोई प्रोग्राम में बुलाएं तो भी नहीं आते, वो वहां छोड़ के उठना ही नहीं चाहते। बल्कि जैसे और एडिक्शंस हैं, टीवी की एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। हमारे डॉक्टर भाई बहने ड्रग एडिक्शन की बात किया करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़े समय में आप अखबारों में पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा खतरनाक एडिक्शन जो है वो टीवी की एडिक्शन है, वहां से लोग जाने नहीं जाते। ओबेसिटी की बात हम करते हैं कि मोटापा बढ़ता जा रहा है इत्यादि, ये भी टीवी भी उसमें एक सहायक है। बहुत सारे जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अभी भी डॉक्टर चर्चा कर रहे थे, उसकी बुनियाद टीवी है, जिसको बाबा ने टीवी कहा है अपनी भाषा में। तो वो चित्र है, वो चित्र ही पतन का कारण बन रहे हैं और चित्र ही उत्थान का कारण बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक बात है, जो किसी ने इसकी तरफ उतना ध्यान दिया नहीं जितना बाबा ने हमारा खिंचवाया है। और उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, दो चार मेरे सजेशन हैं, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि बच्चे जैसे सूर्य है। अब जैसे मैंने सूर्य शब्द लिया, आपके मस्तिष्क में सूर्य का एक चित्र आ गया। अब वो सूर्य है या चंद्रमा है, उसके आसपास लाइट है, खास करके आप देखते हैं जब बारिश होके रुकती है तो उसके बाद आकाश में आप चंद्रमा को देखें तो उसके आसपास बहुत क्लियर आसमान जब क्लियर होता है, खास करके वर्षा के बाद जब गैसेस भी डिजॉल्व हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स भी डिजॉल्व हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक हेलो ऑफ लाइट, ऑर्ब ऑफ लाइट, वो एक लाइट का प्रभा मंडल जिसको हम कहते हैं प्रकाश का, वो तो बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा लगता है, सिल्वरी सिल्वरी जैसा उसके आसपास लगता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आप ऐसे समझो कि जैसे वो चंद्रमा और सूर्य, बाबा ने उसको कार्ब या ऑर्ब, ऑर्ब शब्द है, कार्ब भी कई दफा हमारी सिंधी बहनें भी कहती हैं, बाबा भी कई दफा कहते हैं कि जैसे वो लाइट के कार्ब में है, आप कह दीजिए कि लाइट के ऑर्ब में है। वो ऑर्ब इंग्लिश का एक शब्द है जिसको प्रभा मंडल हम हेलो ऑफ लाइट भी उसको कहते हैं। तो वो आप अपने आप को हमेशा ये समझो, ये चित्र अपने मन में लाओ अभ्यास के लिए, पुरुषार्थ के लिए, कि मैं एक ज्योति बिंदु हूं, जैसे वो चंद्रमा या सूर्य के आसपास एक ऑर्ब ऑफ लाइट होता है, ऐसे मेरे आसपास भी एक आर ऑफ लाइट या ऑर्ब ऑफ लाइट है। तो योग अभ्यास में इसकी बहुत बड़ी मदद मिल सकती, मैं ये समझता हूँ। चित्र का चरित्र पर जैसे प्रभाव पड़ता है, थिंकिंग जैसे कहते हैं यू थिंक सो शैल यू बी, वैसे आप बन जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसे ही अगर हम ये चलते फिरते उठते बैठते ये याद रखें, जो अभी तक हमें ये याद रहता है कि मेरा ऐसा आंख कान नाक वगैरह है, मैं शरीर हूं, जन्म-जन्म मंत्र से हमें ये इमेज अपना पड़ा हुआ है, और भगवान को भी हम इस तरह से ही सोचते और समझते अभ्यास करते रहे। जैसे में किसी ने कहा है कि मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, मनुष्य शरीरधारी है तो उसने भगवान भी शरीरधारी बनाए। जितने भी लोगों ने पूजा करनी शुरू की, जो भी उनके मन के भावना के अनुसार उनका भगवान या इष्ट देव या पूज रहा, वो भी सब उन्होंने शरीर रूप ही दिया। अब जब हमें मालूम पड़ा है परमात्मा का कि वो परम आत्मा है, शरीर की बात उसमें नहीं है, और अपना भी परिचय हमें मिला कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, तो वो जो ज्योति स्वरूप के आसपास लाइट है, लाइट का जो ऑर्ब है या कार्ब है, जो भी आप कह दीजिए, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि उसको आप याद रखिए। दूसरा बाबा ने कहा है कि आप ये सोचें चलते फिरते उठते बैठते इसी स्मृति में रहें, क्योंकि स्मृति का स्थिति से विशेष संबंध है। ये भी एक दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि हमारे आध्यात्म के लिए, हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें बताया है, बहुत रिमार्केबल है कि स्मृति का स्थिति से संबंध है। तो चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है, इन दोनों नियमों को अगर आप एक साथ जोड़कर अभ्यास में प्रयोग करें उसका, जिसको बाबा कहते हैं योग के प्रयोग, एक तो योग का प्रयोग और तरह भी होता है और एक इनका प्रयोग योग में जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करें कि मैं एक फरिश्ता हूं, मैं तो लाइट स्वरूप हूं और हड्डी मांस का नहीं हूं, मैं तो प्रकाश का बना हुआ हूं, तो लाइट और माइट हूं, ये अगर हमारा अभ्यास जितना हम करें, जो हम कहते हैं कि सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं रहती, तो कभी वो कभी वो, ये चित्र अगर अपने सामने लाएं, ऐसे अपने बहुत से चित्र हैं, आप देखते हैं एक चित्र हमारे बुक्स के टाइटल्स पर, मैगजीन्स पर बना रहता है, जिसमें एक योगी बहन या भाई बैठा है, लाइट से सराउंडेड है, चारों तरफ लाइट से घिरा हुआ है, सी ऑफ लाइट में है, और उस पर लाइट उतर रही है और उतर कर चारों तरफ से निकल रही है, रेडिएट हो रही है, बड़ी पावरफुल लाइट की टॉरेंट्स, जैसे टॉरेंशियल रेन्स होती है, मूसलाधार बारिश होती है, ऐसे ही वो जो लाइट है वो बहुत बड़ी करंट्स में रेडिएट हो रही है, उससे निकल निकल कर सारे विश्व पर जा रही है। और बहुत लोग इसका अनुभव करते हैं, आपको भी सबको अनुभव होगा कि जब हम योग में बैठते हैं, जब अपना इस तरह का चिंतन करते हैं कि मैं वो लाइट और माइट हूं और मुझ पर लाइट आकर और विश्व में मैं ये लाइट और माइट रेडिएट कर रहा हूं, तो वो चित्र उस टाइप का हमारा अपना अपने जीवन का आता है, तो उसी स्थिति में हमें जाने में बड़ा सहज हो जाता है। तो ये चित्र हमें बहुत सहयोग देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा एक चित्र और है जिसमें एक बहन, विदेश वाले भाई बहनों ने छापा हुआ है, एक बहन बैठी है योग में और शिव बाबा से लाइट आ रही है, बस आकाश तो दिखाई नहीं देता, आकाश तत्व तो कोई ब्लूइश कलर या दूसरा तो कुछ है नहीं, वो जो ब्रह्म तत्व का प्रकाश का रंग है डिवाइन लाइट का, और जो स्पिरिचुअल लाइट है वो लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट दिखाई गई है। तो वो भी जब चित्रण देखते हैं, कोई भी देखता है, आप कभी एक्सपेरिमेंट्स करें, किसी नास्तिक के हाथ में भी दे दें, कोई थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड हो उसके हाथ में भी दे देंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम जरूर देखता है उसको, जल्दी से छोड़ता नहीं है, उसका ध्यान जाता है। और अगर आप किसी से पूछें कि जब आप इसको देख रहे थे तो कैसा आप सोच रहे थे, क्या स्थिति थी, मैं समझता हूँ कि उसको पहले से निस्बत हल्कापन या विड्रॉल फ्रॉम द बॉडी या थोड़ा सा पीस आंशिक रूप से, और चाहे क्षणिक रूप से क्यों ना हो, हमारे बिना कुछ बताए हुए मिला होगा। तो ये जो चीज है जो मैं कह रहा था कि इसका प्रयोग हमारे अगर जीवन में हो, जो ये थोड़े से चित्र गीत की जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही जो चित्र हैं, ये अगर इस तरह से हमारे पुरुषार्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, जैसे कि बाबा ने बताया कि तारे हैं, तो पहला साक्षात्कार जो बाबा ने किया था उसमें ये देखा था कि तारे तारे से हैं और वो आकाश से आते हैं, कोई देवी बन जाती है, कोई देवता बन जाता है, और वो एक बगीचा सा है, सोने के महल जैसे हैं, दूध और घी की नदियां बह रही हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है, लेकिन साथ में बाबा ने ये कह दिया कि कैसे बनानी है वो नहीं बाबा ने बताया, वो बाद में धीरे धीरे बताया बाबा ने, अगर उसी टाइम से आप बता देते तो फिर शायद पूरा ही हो जाता कोर्स, वो बाबा ने धीरे धीरे बताया। एजुकेशन होता भी ऐसा है, जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हमारा ग्रोथ होता है वैसे वैसे बात बताई जाती है, ये कोई एक डट से हाथ में देने की चीज तो है नहीं, तो ब्रेन ने ग्रास्प करनी होती है जैसे जैसे हम कर पाते। तो उस विधि से जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रयोग से बाबा ने धीरे धीरे हमको जागृत किया, हमें ये बताया। लेकिन वो भी जैसे एक देखा गया दृश्य, विनाश का भी दृश्य बाबा ने जब देखा, साक्षात्कार हुआ, तो कैसा बाबा पर प्रभाव पड़ा। अब जब कोई संदेश पुत्री बाबा के पास जाती है भोग लेकर, फिर संदेश लेकर आती हैं, तो क्या कहती हैं, आज जब मैं बाबा से मिली, बाबा ने कहा आओ बच्ची, बाबा ने बड़े प्यार से देखा। जब इस किस्म की बात वो कह रही होती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि जैसे आप यहाँ ओम शांति भवन के हाल में नहीं हैं, आप भी वही हैं, बाबा सामने कह रहे हैं संदेश पुत्री को कि आओ बच्ची, आपके सामने बाबा और वो होते हैं और लाइट के उसमें आप देखते हैं सब चीज। और फिर आगे आगे जैसे वो कहती है, फिर एक फूल प्रकट हुआ, फिर उस पर ये प्रकट हुआ, तो उस समय फिर वैसी स्थिति हमारी सुनते सुनते होती जाती है। सडनली जब वो कहती है कि बाबा ने कहा अच्छा मेरी याद देना, फिर हम वापस लौटा लेकिन उससे पहले उसी बीच में जो सारा वर्णन हो रहा होता है, उस बीच के वक्त में तो हम सब वहां ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं बिना ट्रांसपोर्ट के। तो वो जो स्थिति होती है वो किस पर आधारित है, जो जो बाबा भी जो साक्षात्कार कराते हैं वो वैसे ही बाबा बता सकते हैं किसी संदेश पुत्री को, बच्चे बाबा बच्चों को जाके ये संदेश देना, दैट्स ऑल। लेकिन पहले कमल प्रकट हुआ, फिर सूरज प्रकट हुआ, फिर माला प्रकट हुई, फिर सब भाई बहन प्रकट हुए, तो ये सब प्रकट हुए तो धीरे धीरे वो हम भी प्रकट होते जाते हैं वहां पर। तो वो सारा जो चित्र में प्रोसेस है आप देखेंगे कि उसका बहुत बड़ा प्रयोग है। हमें जो मन करता है कि अच्छा आज हम सुने, आज क्या संदेश मिला, जो लोग डट कर बैठे रहते हैं, जो वैसे भी हाथ जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं, उस दिन वो भी बैठे होते हैं, वहां ना बैठे हों तो इधर उधर जहां जहां वो स्पीकर लगा होता है वहां सुनते हैं भाई क्या बाबा ने कहा। तो क्या वजह है कि उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट जाता है और हमें बड़ा एक सूदिंग एक्सपीरियंस, बड़ा एक अच्छा लगता है, न केवल वो स्टोरी लाइक होता है, बल्कि वो न केवल उसका अपना एक स्पेशल म्यूजिक होता है हमारे माइंड के लिए, बल्कि उसका जो चित्रमय भाषा है, जो कहने का तरीका है, उसको नाम ही कहते हैं हम साक्षात्कार। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपको मालूम है कि इंग्लिश में जब किसी को कहते हैं ना कि आप मेरी बात समझे, तो उसको लोग क्या कहते हैं, नाउ यू सी इट। और जब कोई समझाता है आई सी, मैं तो बात समझा रहा हूँ, दिखा तो कुछ भी नहीं रहा, फिर भी कहता है आई सी, बट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीइंग, देखने की तो कोई इसमें बात ही नहीं, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कहते अब मैं उसको बात करता हूँ और हर दो मिनट के बाद कहते आई सी आई सी आई सी। तो जब तक वो देखता नहीं है मन के आंख से किसी बात को, तो वास्तव में समझता नहीं। समझना और देखना, किसी ने कहा है सीइंग इज बिलीविंग, देखने से ही लोग विश्वास करते हैं। सीइंग का आई का इतना महत्व है, जिसको बाबा कहते हैं हमारी आईज क्रिमिनल हो चुकी, आंखें धोखा देती हैं, और ये आंखें ही जो है अब हमारी पवित्र हो जाए, दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाए, तो फिर सृष्टि भी पवित्र हो जाएगी।